ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वित्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र है जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ है, उसमें प्रथम सूत्र के टीका में अभी हम पृष्ठ संख्या 186 पर आ गए हैं, 186। पहला पैराग्राफ हमने सुबह देखा था, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। इस शास्त्र में अनादि काल से चला आने वाला औदयिक भाव प्रथम नहीं लिया है। क्या कहते हैं हमने देखो, जैसे पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, परंतु किसी भी जीव के अनादि से औदयिक भाव तो है ही है। बाद में उसका नाश करके वो धर्म प्रकट करके क्षायिक भाव प्रकट होता है, किंतु अनादि का ही औदयिक भाव है। परंतु सूत्र में सबसे पहले औपशमिक भाव को लिया है, औदयिक को नहीं लिया है, औपशमिक भाव को पहले लिया गया है। यह ऐसा सूचित करता है कि इस शास्त्र में स्वरूप को समझने के लिए भेद बतलाए गए हैं, तथापि भेद के आश्रय से। कौन से भेद बताए? स्वरूप समझने, एक तो पारिणामिक भाव त्रैकालिक है और पर्याय रूप भाव चार है, तो भेद करके समझाया तो सही, परंतु भेद के आश्रय से अर्थात औदयिक औपशमिक क्षावशमिक या क्षायिक भावों के आश्रय से विकल्प चालू रहता है। जहां जहां भेद पर लक्ष्य जाता है वहां विकल्प होते हैं, इसलिए आश्रय जिसका करना है वो तो जो अनादि अनंत एक रूप भाव है, जो पारिणामिक भाव है, उसी के आश्रय से निर्विकल्प हो सकते हैं। तो कहते हैं अर्थात अनादिकाल से चला आने वाला औदयिक भाव ही चालू रहता है। किससे? भेद के आश्रय से। राग की ही उत्पत्ति होती है, इसलिए औदयिक भाव ही चालू रहता है। इसलिए उन भावों की ओर का आश्रय छोड़कर उसको जानना नहीं, ये बात नहीं है। पहले में पहले कैसा है जानने के लिए सभी भावों को जानना है, अब आश्रय लेना है, जिसमें एकाग्र होना है। तो जो क्षणिक भाव है, औदयिक आदि क्षायिक भाव तो है ही नहीं है, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको भी औपशमिक भाव भी नहीं है। क्षावशमिक भाव जो ज्ञान में और वीर्यादि में है वो तो है, और औदयिक भाव है, उनके आश्रय से तो उसको धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं उनका आश्रय छोड़कर ध्रुव रूप पारिणामिक भाव की ओर लक्ष्य करके एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि ये ध्रुव रूप भाव में मैंपना स्थापित करके उसमें जीव एकाग्र होता है तो सबसे पहले औपशमिक भाव की उत्पत्ति होती है। ऐसा करने पर पहले औपशमिक भाव प्रकट होता है और क्रमशः शुद्धता के बढ़ने पर, औपशमिक भाव भी उसी से परक होगा। और शुद्धता बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी उसके लिए कुछ अन्य उपाय होगा ना, वही उसी में एकाग्र होने से शुद्धता बढ़ेगी, और उसी में एकाग्र होते रहने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब क्षायिक भाव प्रकट होता है। अब आगे वाला जो पॉइंट है 9वें नंबर का, इस सूत्र में नए प्रमाण की विवक्षा। देखो, प्रमाण सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, और जो श्रुत ज्ञान है, सम्यक श्रुत ज्ञान, उसके जो भेद है विशिष्ट एंगल से किसी विशिष्ट अपेक्षा से जो जाना जाता है उसको कहते हैं ने। वस्तु के किसी अंग को किसी धर्म को मुख्य करके द्रव्य या वस्तु को उस रूप में देखना, उस रूप में जानना या उस रूप कथन करना। नए तो कथन में भी होते हैं और जानने में भी होते हैं। तो कहते हैं वर्तमान पर्याय और उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य। देखो ये भाषा थोड़ी अटपटी है, हम ये वाक्य पहले पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ देखते हैं। यहां दो बातें बताई है, एक कौन सी है वर्तमान पर्याय और दूसरी द्रव्य सामान्य तथा उसके गुणों का सादृश्यतया त्रिकाल ध्रुव रूप से बनाए रहना। दो बातें, एक तो द्रव्य सामान्य जो त्रिकाल ध्रुव रूप रहता है जिसको हमने अभी पारिणामिक भाव का, यानी द्रव्य का जो ध्रुवपना जो है नित्य जो अंश है, द्रव्य का एक नित्य अंश और दूसरा द्रव्य का बदलता अंश, ऐसा पूरा मिलकर द्रव्य है। यहां दो आंकड़े लिखे ना, वर्तमान पर्याय के बाद एक अंक लिखा है वहां और ध्रुव रूप से बने रहना उसके बाद दूसरा अंक लिखा है। ऐसे दो पहलू प्रत्येक द्रव्य में है। सिद्ध में ऐसे दो पहलू हो गए कि नहीं हो गए? हाँ बोले, सिद्धों में ये दोनों ही पहलू है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं शांतिलाल जी? एक ही रहेगा। हाँ अंजुबेन, आप कुछ कहना चाहते हैं? दोनों ही रहना चाहिए। क्यों? सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है कि नहीं है? प्रत्येक द्रव्य में कहा, यहां पर प्रत्येक द्रव्य में हर समय एक एक अवस्था होती है। तो द्रव्य में वर्तमान अवस्था, अवस्था यानी द्रव्य की जो वर्तमान जिस पर्याय में जिस अवस्था में जिस दशा में द्रव्य पाया जाता है वो उसकी वर्तमान पर्याय है। और उसका जो नित्य टिकने वाला जो ध्रुव अंश है, ऐसे दोनों मिलकर हम द्रव्य कहेंगे। तो सिद्ध भगवान में भी वर्तमान दशा तो उनकी सिद्ध रूप दशा, सिद्ध दशा चालू है। तो ये दो पहलू प्रत्येक द्रव्य में है, अकेले जीव द्रव्य की भी बात नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में ये दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। हाँ हाँ, गुजराती में कुछ अलग लिखा है। हाँ
ऐसा ही है। हाँ उसमें दो भाग किया, एक वर्तमान पर्याय और दो उसमें भी लिखा है ये बात करता जे द्रव्य सामान्य तथा तेना गुणों नु सादृश्य पड़े त्रिकाल ध्रुव रूप से टकी रहू। तब ये दूसरा पार्ट आया तो मैं समझो कि टू ए एंड टू बी, टू ए में हो गया द्रव्य सामान्य और टू बी हो गया तथा तेना गुणों नु सादृश्य पड़े त्रिकाल ध्रुव टकी रहू
तथा इन्हें प्लस यानी। हाँ देखो,
हमारे टू ए एंड टू बी में क्या फर्क पड़ेगा?
टू ए और टू बी ऐसे दोनों नहीं है, द्रव्य सामान्य कहते हैं। तो द्रव्य सामान्य जब कहते हैं, द्रव्य सामान्य कहो या उसके अनंत गुण को एक ही बात है, ऐसा नहीं कि द्रव्य और गुण। मेरा प्रश्न है, गुण द्रव्य के साथ रहते हैं क्या द्रव्य में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, यानी ये कोई द्रव्य है,
गुणों का समूह और द्रव्य कोई अलग बात नहीं है ना,
तो ये द्रव्य है और उसमें ये गुण रहते हैं, ऐसा है? इनके समूह को ही हमने द्रव्य कहा। प्राथमिक स्टेज में बताने के लिए द्रव्य में गुण है कहा, कोई कहेंगे द्रव्य के साथ गुण है, ऐसा भी नहीं है। तो द्रव्य अलग है उसके साथ गुण है ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। गुणों के समूह को भी हमने उसी को हमने द्रव्य कहा। तो द्रव्य सामान्य कहो या गुणों का सादृश्यता, सादृश्य वही के वही पना। समझाने के लिए देखो, द्रव्य सामान्य तथा ने समझाने के लिए, उसी में वो गुण सारे है ये समझाने। कभी कभी क्या होता है, ये तो उसमें बहुत सूक्ष्म डिफरेंस होता है, परंतु हमें समझ में द्रव्य सामान्य क्या है। जैसे हम ज्ञान सामान्य कहते तो क्या होगा, पर्याय क्या है, वर्तमान पर्याय कौन सी? अभी हमारी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, किसी की कौन सी होगी? केवल ज्ञान होगी। और सब में सादृश्य रहने वाला ऐसा क्या है? तो ज्ञान गुण है, तो उसको हम कहेंगे ज्ञान सामान्य। ऐसे ही वर्तमान अवस्था चल रही, पूरे द्रव्य की वर्तमान अवस्था ली है, और उसमें ध्रुव रूप रहने वाला क्या है, तो द्रव्य सामान्य। तो द्रव्य सामान्य कहो या अनंत गुणों का पिंड रूप जो द्रव्य उसको कहो, एक ही बात है, क्योंकि गुण भी सामान्यतः ही रहते हैं, गुणों की पर्याय होती है, परंतु सामान्य की ओर हमको देखना है तो गुणों को हम कहेंगे। जब द्रव्य कहते उसमें अनंत गुण ही आते हैं ना, उसमें उसके अलावा क्या है, क्योंकि एक तो पर्याय बता दी, गुण पर्यायवत द्रव्यम जब हम कहते हैं तो गुण तो कायम रहने वाला जो अन्वय रूप भी उसको कहते हैं, कंटिन्यूअस जो अंश है उसका, द्रव्य का एक रूप जो अंश रहता है उसको हम गुण कहेंगे, और उसमें जो बदलने वाला अंश है उसको हम पर्याय कहेंगे। वो कई गुणों के भिन्न थोड़ी होती है, गुणों की ही वर्तमान स्टेटस है वो। तो द्रव्य सामान्य कहो या गुणों का अखंड पिंड कहो, एक ही बात है।
द्रव्य के नाम से बोले तो द्रव्य सामान्य, हाँ, और से देखे तो त्रिकाल कितने वाले गुण,
हाँ, तो ये दूसरा जो पहलू है वो एक ही है एक्चुअली, ऐसे दो भेद नहीं है उसमें, द्रव्य सामान्य और गुणों का सादृश्य, ऐसे दो भिन्न बातें नहीं है, समझाने के लिए उन्होंने कहा है।
सादृश्य वो सादृश्य और अवान्तर,
सादृश्य ने वही का वही, वही का वही, वही का एक रूप भाव जिसको कहते हैं,
है
और वही का वही है, वैसा का वैसा नहीं, वैसा का वैसा तो पर्याय, सेम तो, हाँ सेम कहना, सिमिलर नहीं, पर्याय में सिमिलर लगा सकते क्योंकि पर्याय तो भिन्न भिन्न होती है, पर ये गुण तो वही का वही का वही का वही चल रहा है, तो उसको सादृश्य कहते हैं। तो यानी प्रत्येक द्रव्य में, अभी हम ये भाषा अटपटी छोड़ देंगे, एक तो नित्य अंश और एक पलटने वाला अंश, अनित्य अंश हम कहेंगे, पर्याय कहेंगे। तो द्रव्य जैसे हम कहते ना, उत्पाद व्यय रूप एक अंश और एक कायम ही रहने वाला जो द्रव्य अंश, ऐसे दो पहलू प्रत्येक द्रव्य में है।
यदि हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोले तो जो द्रव्य बोलते हैं वो द्रव्य सामान्य लेना कि द्रव्य एज अ होल लेना?
द्रव्य एज अ होल, पूरा द्रव्य, हमने जीव द्रव्य, फिर उसका क्षेत्र कितना है तो असंख्यात प्रदेशी, वो कहां से कहां तक है तो असंख्यात प्रदेशी कहेंगे, उसमें सब गुण तो वो भाव में आ जाएंगे, परंतु उसके प्रत्येक समय की पर्याय भी उसमें अंतर्भूत है, अनादि से अनंत काल तक की, इस सबको मिलकर हम अखंड द्रव्य कहते हैं।
दृष्टि का विषय की बात चलती है ना, तो जब भी जो द्रव्य का भाव पाते हैं ना, भाव पाते काल भाव, तभी वो द्रव्य में द्रव्य सामान्य रहते हैं।
वो जब हम दृष्टि के विषय वाला जो द्रव्य कहते हैं तो उसमें सामान्य अंश और विशेष अंश, इसे दो भेद करते हैं। वो सामान्य अंश में भी जब हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सामान्य विशेषात्मक वस्तु को कहते हैं, तब जो सामान्य अंश है द्रव्य की अपेक्षा सामान्य कहेंगे, और ये पर्याय की अपेक्षा विशेष कहेंगे। द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा क्या कहेंगे, अभेद कहेंगे, अभेद कहेंगे ना, हाँ, और पर्याय की अपेक्षा वो असंख्यात प्रदेशों का भेद जो है वो हम पर्याय में डालेंगे। कहीं किसी भी अपेक्षा से भेद करो वो पर्याय हो जाती है। काल यानी अनादि अनंत अखंड जो हम कहते हैं एक रूप जो, तो वो तो काल हो जाएगा द्रव्य का, और उसमें एक एक समय वाली पर्याय का भेद करना वो काल की अपेक्षा भेद पर्याय हो जाएगी। अनंत गुणों का अखंड एकदम हम पूरा ही पुंज लेते हैं तो वो एक हो जाता है, और यहाँ भाव में हमें अनंत गुण ऐसे अलग अलग हम देखते हैं तो ये उसका विशेष हो जाता है। भेदों का लक्ष्य छोड़ना है तो भेद कहीं निकाल देना ऐसी बात नहीं, वो भेद निकाले हमने, पर्याय ने भेद, अकेले एक समय के पर्याय इतना ही उसमें नहीं लेना, कोई भी भेद नहीं डालना है, पूरा अखंड द्रव्य लेना, तो उसमें ये सारे गुण सभी पर्याय इंक्लूड है कि नहीं है।
तो मेन द्रव्य की जो बात की वो
सभी को हमने गौण कर दिया ना, विशेषों को, हम द्रव्य को विशेष की अपेक्षा देख नहीं रहे हैं, पूरा अखंड अभेद ऐसा पिंड हमने ख्याल में लिया है, तो उसमें पर्याय है कि नहीं, हमारी फिर दोबारा दृष्टि पर्याय पर भेद पर जा रही, भेद को जब गौण ही कर दिया तो अभेद की दृष्टि में भेद नहीं दिख रहे हैं, ये बात वहां लिखनी है। तो यहां क्या कहते हैं, देखो, आत्मा भी एक द्रव्य है इसलिए उसमें भी ऐसे दो पहलू है, सामान्य विशेषात्मक कहो, यहां क्या कहा, एक वर्तमान पर्याय है और एक नित्य अंश है, उनमें से वर्तमान पर्याय का विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है, नय यानी वस्तु को पर्याय रूप से देखने वाला जो ज्ञान का अंश है उसको हम पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे। अवस्था से देखना, हम सोना हमारे पास है तो हमने उसको बंगड़ी के रूप में देखा, हार के रूप में देखा, तो हमने पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को पर्याय रूप से देखा। सोने को हम बंगड़ी के फॉर्म में देख रहे हैं, सोना कहीं गायब नहीं हुआ है, वस्तु तो पूरी अखंड है वहां पर, फिर भी हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो पर्याय की दृष्टि से। अब कहते हैं ये पर्याय को विषय करने वाला है वो पर्यायार्थिक नहीं है। इस सूत्र में कथित पांच भावों में से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक, ये चार भाव पर्याय रूप यानी वर्तमान अवस्था मात्र के लिए है, इसलिए वे पर्यायार्थिक नहीं का विषय है। वो पर्याय को विषय करने वाले हैं, ये जो भाव है हमने पहले देखा था, ये अवस्था को सूचित करने वाले भाव है, पर्याय रूप भाव है। और पारिणामिक भाव वो स्वभाव रूप नित्य रहने वाला, नित्य अंश वाला भाव है। उस वर्तमान पर्याय को छोड़कर द्रव्य सामान्य, सामान्य ने जहां विशेष, यानी विशेष का अर्थ होता है भेद, और भेद नहीं करते हुए जो है वो उसको हम कहेंगे सामान्य। सामान्य और विशेष एक दूसरे के बिना कभी नहीं होते, जहां सामान्य है वहां विशेष होता ही है, यानी सामान्य विशेष के बिना नहीं है और विशेष भी सामान्य के बिना नहीं है। हमने देखा सोने पर भी घटित किया था, सोना है तो उसका कोई ना कोई फॉर्म वहां होगा ही होगा, और वो फॉर्म है तो किसका फॉर्म है, तो हम कहें ये सोने की बंगड़ी है। वैसे द्रव्य सामान्य वर्तमान पर्याय को छोड़कर द्रव्य सामान्य तथा उसके अनंत गुणों का जो सादृश्यता त्रिकाल ध्रुव रूप स्थिर रहना, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ये द्रव्य सामान्य कहो या अनंत गुणों का ऐसा पिंड कहो, ये त्रिकाल रहने वाला नित्य अंश है। उस भाव को अभी उसके क्या क्या नाम है जिसको हम यहां पारिणामिक भाव कहते हैं, उसी को कारण परमात्मा, कारण समय सार या ज्ञायक भाव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कारण परमात्मा। भगवान को जो हम परमात्मा कहते हैं वे कैसे परमात्मा है मालूम है? कार्य परमात्मा। परमात्मा रूप पर्याय उनकी प्रकट हुई है, तो अरिहंत और सिद्ध ये कार्य परमात्मा है। वो कार्य परमात्मा कैसे प्रकट हो गए? कारण परमात्मा का लक्ष्य करने से। किसका लक्ष्य करने से कार्य परमात्मा हुए? हाँ, तो ये परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने से पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हुई, तो उसको कारण परमात्मा कहा। ऐसे ही कारण समय सार यानी क्या? समय सार यानी शुद्धात्मा। पर्याय में जो शुद्धात्म दशा प्रकट हुई किसके लक्ष्य से हुई? परम पारिणामिक भाव के लक्ष्य से हुई, तो उसको समय सार का कारण, कारण समय सार कहा। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं ना, कारण शुद्ध पर्याय भी आते। शुद्ध पर्याय का कारण उस द्रव्य में ही विद्यमान है, उसके लक्ष्य से पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो ये कार्य शुद्ध पर्याय और ये कारण शुद्ध पर्याय, ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं उसके लिए। उसी को ज्ञायक भाव कहते हैं। ज्ञायक भाव ने अकेला ज्ञान गुण नहीं लेना, पूरा पारिणामिक भाव अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसको ज्ञायक भाव कहते हैं। वह त्रिकाल सादृश्य रूप होने से, सादृश्य ने वही का वही, उसमें कोई चेंजेस कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन होता है वो पर्याय में होता है। ये जो पारिणामिक भाव है वो अनादि से अनंत काल तक वही का वही है, सादृश्य रूप भाव है, इसलिए कहते द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये दोनों पहलू कौन से दो? एक पर्यायार्थिक नय का विषय और एक द्रव्यार्थिक नय का विषय, दोनों एक होकर संपूर्ण जीव द्रव्य है। ये संपूर्ण जीव द्रव्य में क्या है? एक त्रिकाल रहने वाला एक ध्रुव अंश और एक पर्याय रूप अंश, दोनों मिलकर पूर्ण अखंड द्रव्य होता है, और वे दोनों पहलू प्रमाण के विषय हैं। ये प्रमाण ज्ञान को कहते हैं, तो ज्ञान दोनों को जानता है, त्रिकाल अंश को और वर्तमान पर्याय को, ये मिलकर ही वस्तु होती है। इन दोनों पहलुओं का नए और प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान करके हमें वस्तु को जानना है, तो नए और प्रमाण से हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके द्वारा हम वस्तु को जानते हैं। पहला अध्याय हुआ है ना, प्रमाण नए अधिगमा वगैरह बात, ये अधिगम होता है प्रमाण और नए के द्वारा अधिकम होता है, तो इसकी तो विस्तार से चर्चा पहले अधिकार में आ ही चुकी, बहुत सारे सूत्र इसी के पर आधारित है, नए और प्रमाण, ये प्रमाण क्या है, नए क्या है, निक्षेप क्या है, ये पूरे पहले अधिकार का विषय है। तो कहते हैं इन दोनों पहलुओं का जो वर्तमान पर्याय है और नित्य रहने वाला जो भाव है, दोनों को नए और प्रमाण से जानना है, और क्या यथार्थ ज्ञान करके, यथार्थ ज्ञान होने के लिए पर्यायों को भी जानना पड़ेगा और नित्य अंश को भी जानना पड़ेगा और अखंड वस्तु को भी जानना पड़ेगा। जानने के लिए दोनों को जानना है, और एकाग्र होने के लिए जो अखंड जो वस्तु है, जो नित्य अंश है, उसमें एकाग्र होना है। तो ये जानेंगे नहीं हम पर्यायों को, तो ये ज्ञान हमारा सही नहीं होगा। जब सबको जानकर जो द्रव्यार्थिक का विषय है उसमें हम एकाग्र हो जाते हैं, तो पर्याय में वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान तो सबको जानता है, स्व को पर को सबको जानता है, जानना कोई निषेध नहीं है, परंतु स्व किसमें स्थापित करना है। ज्ञान तो बताता है ये पर है, ये स्व है, और श्रद्धा मानती ही नहीं ना, श्रद्धा ने तो शरीर को ही स्वरूप से मान लिया है, राग में स्वपना स्थापित किया है, पर्याय रूप इतना ही अपने को मान रहा है। ये जब ज्ञान ने जैसा बताया वैसा श्रद्धा स्वीकार करती है और अंतरंग में उस विषय में एकाग्र हम हो जाते हैं, तो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो यथार्थ ज्ञान करके जो जीव अपनी वर्तमान पर्याय को, देखो ये जो सम्यक दर्शन का कार्य होने वाला है वो अपने ही पर्याय में होने वाला है। पर्याय अब तक किसका लक्ष्य कर रही थी, पर का या पर्याय का, अब पर्याय स्वयं पर्याय का लक्ष्य छोड़ के त्रिकाली में लक्ष्य लगाएगी। तो अपनी वर्तमान पर्याय को अपने अभेद त्रैकालिक पारिणामिक भाव की ओर ले जाता है, उसे सम्यक दर्शन होता है, और वह क्रमशः स्वभाव के अवलंबन से, अवलंबन लेना है ना, उसी में एकाग्र होना, आगे बढ़कर इन्हें और स्थिरता प्राप्त करना, मोक्ष दशारूप क्षायिक भाव को प्रकट करता है। ये भाषा ऐसी है ना नयों के प्रमाण के इसके विषय में, तो इसलिए हमें ऐसे अटपटी लगते हैं। अब आगे के सूत्र हमने थोड़े पढ़ भी लिए थे पहले, फिर दोबारा ये सूत्र पढ़ लेते हैं। ये भावों के भेद हमने विस्तार से जाने थे, फिर हम दोबारा देखते, देखो द्वि नव जिस अनुक्रम से हमने भावों के नाम देखे थे उसी अनुक्रम से यहाँ संख्या बता रहे हैं। पहले में पहले हमने कौन से भाव को याद किया था, याद औपशमिक, तो द्वि यानी दो, तो द्वि नव यानी नौ, अष्ट यानी आठ, सॉरी अष्टादश, सॉरी अष्टादश यानी अठारह, एक विंशति यानी इक्कीस, और त्रि यानी तीन, भेदा ऐसे भेद वाले यथाक्रमम, यथाक्रम से ने अनुक्रम से है। अब इन जो भेदों का वर्णन आगे के सूत्रों द्वारा कहते हैं। अब औपशमिक भाव के कौन कौन से भेद है, तो सम्यक्त्व चारित्र्य, इसको हमने बहुत बार देखा है, उसके विस्तार से चर्चा भी की है कि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ऐसे औपशमिक भाव के दो भेद पाए जाते हैं। अब औपशमिक सम्यक्त्व की बात हम पढ़ते हैं टीका में। जब जीव के अपने सत्य पुरुषार्थ से, देखो मिथ्यात्व हो या कोई राग द्वेष के भाव हो या भी जो वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला हो, अपने ही स्वयं के कारण से वो स्वयं अपने ही पर्याय रूप परिणमने का वहां पुरुषार्थ चलता है। यहां मोक्ष का पुरुषार्थ को हम सत्य पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ कहेंगे, और मिथ्यात्व रूप परिणमेगा, राग वेदेश रूप परिणमेगा, तो हम कहेंगे उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है, संसार का पुरुषार्थ चल रहा है। तो सत्य पुरुषार्थ से औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, तब जड़कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वे मिथ्यात्व कर्म का और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का स्वयं उपशम हो जाता है। इसको भी हमने बोर्ड पर बहुत अच्छी तरह से देखा था। दर्शन मोहनीय कर्म का अनादि से ही उदय हो रहा था, अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय हो रहा था। कौन से चारों? अनंतानुबंधी आदि में क्रोध मान माया लोभ तो है ही है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संज्वलन भी उसके साथ लेना, तो चारों कषाय चौकड़ी, चौकड़ी में कहते क्रोध मान माया लोभ आ गए। तो अनादि से उनका उदय हो रहा था, बंद भी हो रहा था। जब जीव तत्व विचार में तद्रूप होकर तत्व निर्णय करने लगता है तो ये सारे मंद होते होते उनका उपशम स्वयमेव हो जाता है। दर्शन मोहनी तो उसमें गैप होती है और गैप के ऊपर के परमाणु सारे उपशमित हो जाते हैं। और अनंतानुबंधी में क्या होता है, सुबह में भी देखा था ना, वो है वही पर है, गैप के काल में अनंतानुबंधी के परमाणु है परंतु वो स्वयं रूप से उदय रूप नहीं होते, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से होकर एक एक निषेक उस रूप होकर उदय में आता है। तो यहां जो उपशम कहा है, दर्शन मोहनीय का जो उपशम है उसको प्रशस्त उपशम कहते हैं और अनंतानुबंधी का जो उपशम है उसको अप्रशस्त उपशम या सदस्थारूप उपशम कहते हैं। ये दो प्रकार के अलग अलग उपशम होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों के तथा किसी सादी मिथ्या दृष्टि के, किसी सादी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा, अब पूरा वाक्य पढ़ते हैं तब ख्याल में आएगा। मिथ्यात्व की एक और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार कुल पांच प्रकृतियां उपशम रूप होती है। जिसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व प्रकृति है उसके दर्शन मोहन की एक ही प्रकृति है और अनंतानुबंधी की चार, ऐसे टोटल पांच का उपशम होता है। और शेष सादी मिथ्या दृष्टि के, अन्य कोई ऐसे मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि कहा, एक बार उपशम समेत तो होकर नीचे आए हैं मिथ्यात्व दशा में, तो उनकी दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियां हैं और अनंतानुबंधी की चार है। तो उनके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये तीन तथा अनंतानुबंधी की चार, यो कुल सात प्रकृतियों का उपशम होता है। जीव के इस भाव को औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। इसको तो बहुत बार और बहुत विस्तार से हमने देखा है। अब औपशमिक चारित्र क्या होता है, जब जिस चारित्र भाव से उपशम श्रेणी के योग्य भाव प्रकट करता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। देखो औपशमिक चारित्र ने क्या कि अभी जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर चढ़ता है, तो अभी उसके सत्ता में कितनी प्रकृतियां, अभी उसके उदय में कितनी, उसको पहले देखते हैं। अन्य ज्ञानावरण आदि की उदय की हम बात नहीं करेंगे, मोहनी का कितने का उदय चल रहा है उसकी बात करेंगे। हाँ, संज्वलन का उदय चल रहा है, बराबर है ना। जब वो श्रेणी चढ़ेगा सातवें से ऊपर के गुणस्थानों में चला जाएगा तो संज्वलन कषाय का उदय है और यथा योग्य अन्य कषायों का भी उदय है, जैसे हास्यरति वगैरह, उसकी चर्चा हम थोड़ी गौण कर देंगे। तो उसके उदय सहित चढ़ेगा परंतु वहां जो सत्ता में जो है 21 प्रकृतियां है, वहां पर कौन सी नहीं है,
तीन प्रकार के
कषाय, अनंतानुबंधी है ना, उसको अन्य रूप परिणमित करा देता है और द्वितीय उपशम सम्यक तो हो गया है तो ये ऑलरेडी उपशमित है। इसलिए जो उपशमित नहीं है ऐसी 21 प्रकृतियां हैं। फिर से उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, पहले हम क्षयिक की बात करेंगे। कोई क्षयिक सम्य दृष्टि जीव है, उसने क्षय किसका किया है, अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी का, और उसके सत्ता में क्या पड़ा है, अभी चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, उदय रूप कितने उसकी हम चर्चा अलग गौण करेंगे। तो सत्ता में 21 प्रकृतियां हैं,
नौ कषाय और बारह
अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और नौ कषाय। उदय रूप तो संज्वलन एक कोई है, क्रोध या मान या माया या लोभ, पर उदय रूप एक कषाय है और उदय रूप जो कोई हास्यादि है उसकी बात हम छोड़ देंगे अभी यहां पर। तो कहते हैं ये उपशमित यानी ऐसी उपशमित नहीं है कि उसका बिल्कुल गैप नहीं उसमें तैयार हुई है। अभी जो कैसे उपशमित है कि संज्वलन रूप से उदय में आ रही है, तो उसके लिए बहुत बड़ी गैप तैयार करनी पड़ेगी, तब ग्यारहवा गुणस्थान प्राप्त होगा। जैसे हमने दर्शन मोहिनी में अंतर देखा था, ऐसे चारित्र मोहिनी में अंतर हो जाएगा और अंतर के ऊपर के परमाणुओं को उपशमित कर देगा। उपशमित करना है ना, अपनी जगह छोड़कर उदय में नहीं आना, इस तरह से पोजीशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे उपशम करने के लिए वो सभी परमाणुओं में सभी कर्मों में गैप तैयार हो जाएगी। तो ऐसी गैप करके फिर ऊपर का उपशम करते हैं और गैप में आता है जीव, तब दसवें के बाद ग्यारहवा गुणस्थान प्राप्त होता है।
दसवें के से ग्यारहवें और ग्यारहवें तक पहुंचने ये बार कशा है तीन चौकड़ी वाले और
नौ कशा है,
नौ कशा है भी
उनका सबका उपशम करते करते ऊपर चढ़ता है।
तो ये अप्रशस्त उपशम होता है?
नहीं, यहाँ तो गैप वाला उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम तो पहले था, द्वितीय उपशम तो उसने सम्यक्त्व में कर दिया। दर्शन मोहिनी के कोई अभिक्षायिक की बात हमने की, कोई क्या करता है, क्षोपम सम्यक दृष्टि था सातवें तक, तो क्षोपम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी नहीं चढ़ता है। अभी नहीं की है क्योंकि वो हो जाएगी। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, वहां फिर वो दर्शन मोहर जो कोई वहां था उसमें बहुत बड़ा गैप तैयार होता है।
आपने अभी क्या कहा,
वो हमने क्षायिक की बात पहले उठाई थी, हाँ। समझाने के लिए, वो आसान है समझने के लिए, इसलिए
औसमिक में
तो औपशमिक पहले हमने सम्यक्त्व देखा था और औपशमिक अभी चारित्र देख रहे हैं। चारित्र मोहिनी में भी ऐसा ही गैप तैयार होता है। चारित्र मोहिनी के, हाँ, उसमें गैप होगा और नीचे के जो परमाणु रहते हैं उसमें वो नौवां गुणस्थान होगा, दसवां गुणस्थान होगा और वो होते होते वो फिनिश हो गए नीचे के नीचे, और जब गैप का पीरियड आता है तो वहां ग्यारहवां गुणस्थान आ जाता है। उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इतना ही समझना है वो औपशमिक चारित्र है।
पहले में सिर्फ दर्शन मोहिनी का गैप में होता, दूसरा तो अप्रशस्त रूप,
हाँ वो अप्रशस्त उपशम था। यहाँ तो अभी जो चारित्र मोहिनी है उसी में पूरा गैप कर दिया, और यहाँ चारित्र मोहिनी का जो है उसमें गैप करके उपशम किया, उसको ग्यारहवें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र हो जाता है।
दसवें तक पहुंचने में तो संज्वलन भी रहता
है ना? हाँ, संज्वलन अभी उसमें बहुत विस्तार है ना, एक सपनासार लब्धिसार में, तो यही सब एक एक गुणस्थान में कितने प्रोसेसेस होते हैं, किस रूप में एक कषाय अन्य कषाय रूप होते होते किस तरह से उसको सूक्ष्म किया जाता है, किस तरह उसमें उपशमित किया जाता है, वो कितने काल में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, बहुत विस्तार है उसमें। हमें तो इतना ही समझना है वो चारित्र मोहिनी का, यहां लिखा है देखो, उस समय मोहिनी कर्म की अप्रत्याख्यानावरणादि 21 प्रकृतियों का स्वयं उपशम हो जाता है। हो जाता है उसमें भी कितनी क्या क्या प्रोसेसेस होती है, हजारों हजारों बार क्या क्या होते रहता है वो सारा। ये जो उपशम अकेले नौवे गुणस्थान के 150 पेज है भाई, लब्धि सार क्षपणा सार में, तो कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं वहां। तो इसको तो एक लाइन में समझाना बहुत कठिन है ना।
कैसा अमेजिंग लगता है कि कितना कैसा निमित नैमित,
हाँ, जीव को कुछ नहीं करना
है तो सब कर्मों में होता है।
कर्मों में इतना अपने आप हो जाता है, ये जीव के फेवरेबल होता है सारा। जीव तो तत्व ये तो उसके पारिणामिक भाव में एकाग्र हो गया है ना, अभी श्रेणी चढ़ता है तो उसमें कितना अति इंद्रिय आनंद का अनुभव कर रहा है, और हम मानते हैं मुनि कितने कष्ट में है। अरे मुनिराज तो अपने आनंद में मस्त है वहां पर, और कर्मों में ये सारी विधि अपने आप हो जाती है। अब यहां 188 पृष्ठ पर आए हम, तो वहां पूछते हैं जड़ कर्म प्रकृति का नाम सम्यक्त्व क्यों है, ये सम्यक प्रकृति नाम क्यों दिया उसको? दर्शन मुनि की प्रकृति है ना, तो उसको सम्यक प्रकृति नाम क्यों दिया? कहते सम्यक दर्शन के साथ यानी सहचरित उदय होने से, उपचार से कर्म प्रकृति को सम्यक्त्व नाम दिया है, उसको सम्यक्त्व मोहिनी भी कहते हैं। सम्यक को प्रकृति भी कहते हैं। अब क्षायिक भाव, क्षायिक भाव भी हमने विस्तार से देखे थे, सूत्र पढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणी च, उसका अर्थ देखते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य तथा च कहने पर क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, इस प्रकार क्षायिक भाव के 9 भेद हैं, उसको भी हमने विस्तार से देखा था, याद है ना? यानी उसके जो कोई वहां कर्म है, अभी ज्ञानावरणादि जो समस्त कर्म है पांचों ही, उन सब का क्षय होने पर क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण के समस्त जो दर्शनावरण है उनका क्षय होने पर क्षायिक दर्शन प्रकट, अकेला केवल ज्ञानावरण या केवल दर्शनावरण नहीं लेना, सभी के सभी कर्मों का वहां नाश हो जाता है। ये दानादि पांच भाव उसमें भी ऐसा ही लेना, अंतराय कर्म के क्षय होने पर दानादि पांच क्षायिक भाव प्रकट होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र की भी बात हमने पहले देखी थी। दर्शन मुनि का क्षय होता है, उसी के साथ अनंतानुबंधी का भी क्षय हो जाता है, वहां तो क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और अन्य जो 21 प्रकृतियां हैं, जैसे हमने उपशम श्रेणी की बात की थी, वहां उपशमित होती है, और क्षपक श्रेणी में क्षय होते होते चढ़ता है, तो उसको कहते हैं क्षायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में। अब हम आगे वाला देखेंगे क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद।
इसे हम कुछ भी बोले कि ये गुणस्थान में ऐसा होता है, और ये गुणस्थान का विकास जो अंतर्मूर्त है, कितना भी असंख्या समय है, तो वो जो प्रक्रिया हुई वो जैसे पहले समय में पूरे पूरी हो गई कि वो गुणस्थान में इतने असंख्या समय में धीरे धीरे हुई। पहले से
फॉर एग्जाम्पल कौन सी कहना चाहते हैं
आप? 12वें गुणस्थान है समझे, तो 12वें गुणस्थान में ये सबका क्षय हुआ, तो बारहवें समय को 12वें गुणस्थान का समय 1000 समय था, तो वो 1000 समय में पहले समय में सब निकाल हो गया।
देखो जब हम कहते हैं ना 12वें गुणस्थान में क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ, तो क्षायिक चारित्र होकर 12वां गुणस्थान हुआ है, यानी 10वें के अंत तक सूक्ष्म लोभ का उदय है, अंत में उदय है, और नेक्स्ट समय में उदय नहीं है, तो नेक्स्ट समय एक समय में 10वां गुणस्थान है, दूसरे समय में 12वां गुणस्थान है। 10वें में लोभ का उदय था, 12वें में कुछ नहीं है,
तो 12वें की शुरुआत में हो गई।
हाँ, तो हम ऐसे उसमें 2 कथन आते हैं, तो इसका क्षय कहाँ होगा? कोई कहेंगे 10वें के अंत में, और कोई कहेंगे 12वें के पहले समय में। जैसे ऐसा
अगस्त को मिला आजादी, तो वो लोग 14 अगस्त मनाते हैं, हम लोग 15 अगस्त मनाते।
नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखो देखो, अभी हम कहेंगे आपको कि हम सभी शिविर के लिए देवलाली में इकट्ठे हुए थे, तो फिर आप वहां से देवलाली के बाद वहां गजपंथा चले गए और हम बम्बई चले गए। हम कहां बिछुड़े?
देवलाली से।
देवलाली में बिछुड़े, देवलाली में तो साथ में थे, तो देवलाली में बिछुड़े क्यों कहते हैं? ख्याल, ये 2 ऐसे कथन की पद्धति है। ये बंध विच्युति भी कहते ना, ये मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं होता, तो कहते हैं मिथ्यात्व की बंध की विच्युति मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। अरे पर मिथ्यात्व में तो बंध है, बंध का नाश कहाँ हुआ है? तो इसके लिए 2 प्रकार से कथन पद्धति आती है, जहां है उसी पर नाश कहेंगे। जो
जैसा ही हो गया,
ऐसा ही है कि यहाँ लोभ का उत्पाद है 10वें में, और 12वें में हम कहेंगे लोभ का व्यय हो गया है, परंतु जहां है उसी पर नाश कहने की भी पद्धति है, और जहां एक्चुअली है वहां कैसे नाश कहेंगे? हम आगे के पर्याय में नाश कहेंगे। ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे 2 ही कथन की पद्धति है, परंतु हमें समझना है कि 12वें में है ही नहीं है और 10वें में है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। 10वें में लोभ है, 12वें में लोभ इज नो मोर, वो था और उसका नाश किया, ऐसा नहीं।
लोभ व्यय हुआ तो उसके हिसाब से वो 10वां कहते हैं कि 10वें में हुआ।
10वें में तो है
एंड में, और
नहीं, पर 10वें में, 10वें के एंड में उत्पाद रूप है, और 12वें के शुरू में वो क्षायिक चारित्र रूप उत्पाद है, और लोभ नहीं होना को ही व्यय कहते हैं। हमें ऐसा लगता है वो सूरज उग गया और वो हलू धीरे धीरे वो नीचे आ रहे, ऐसा व्यय को नहीं समझना है। एक समय में है और दूसरे समय में नहीं है, उसी को व्यय कहते हैं। ऐसे हम चार उंगली देखेंगे, जैसे प्रवचन सार की 99वीं गाथा में प्रदेशों के ऊपर से पर्यायों को समझाया है। जैसे होंगे तो एक प्रदेश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अभी हम तीसरे प्रदेश की बात करेंगे। ये तीसरा प्रदेश इस स्थान पर है और दूसरा प्रदेश यहां पर है। तो दूसरा प्रदेश यहां है तो उसको कहेंगे ये दूसरा प्रदेश यहां उत्पाद रूप है। यहां तीसरा प्रदेश उत्पाद रूप है और यहां दूसरा प्रदेश नहीं है, हम सबको एक साथ देख रहे हैं, परंतु ये तीसरा प्रदेश है और यहां दूसरा प्रदेश नहीं है, उसी को कहें यहां दूसरे का व्यय है। ऐसा नहीं कि यह यहां था और फिर नष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। एक एक समय में है ना, आप कहेंगे यहां इसका उत्पाद भी हुआ और उसी समय में व्यय हुआ, ऐसा नहीं है।
प्रवचन
वहां प्रदेशों पर घटाया है, प्रदेश तो हम एक साथ देख रहे हैं, तो आप कहेंगे यहां व्यय कहां, यहां तो दिख रहा है, ऐसा नहीं। यहां इसका नहीं होना ही व्यय है। तीसरे के स्थान में दूसरा नहीं पाया जाता है, यही उसका व्यय है। जैसे हमारे किचन में टाइल्स लगी है, 3 नंबर की टाइल हम देख रहे हैं, तो वो 2 नंबर की टाइल नहीं है, 3 की है, तो 3 का उत्पाद और 2 का व्यय कहेंगे। अभाव रूप है, वहां नहीं होना ही उसका व्यय है। ऐसे ही भगवान ने तो हमारी सभी पर्याय देखी है अनादि से अनंत काल तक। अभी ये चार पर्याय हम ऐसे, ये चार, 1, 2, 3, 4 पर्याय लेते हैं, उसके पीछे एक नंबर डाल दो, 1+1, 2, 3, 4। अभी यहां जो 3 नंबर की जो पर्याय है वो अपनी जगह पर है, 2 नंबर की पर्याय अपनी जगह पर है, तो यहां 2 उत्पाद रूप है, यहां 3 नंबर की उत्पाद रूप है, तो यहां हम कहेंगे यहां 2 का व्यय है, यहां 2 का उत्पाद है, 2 का व्यय यहां नहीं हुआ, यहां 2 तो उत्पाद रूप थी और यहां 3 नंबर की उत्पाद रूप है, तो यहां कहेंगे 2 की व्यय रूप है। हर जगह ऐसा ही समझना है।
चीज में ऐसे भी रेगुलर संसारिक एग्जांपल्स में भी ऐसे ही।
अभी हमने अंधकार प्रकाश की सुबह बात की थी ना, प्रकाश का होना ही अंधकार का व्यय है, वैसे किसी अन्य पर्याय का होना ही पूर्व पर्याय का व्यय है, क्योंकि पर्याय एक समय वाली है। ऐसा नहीं कि यहां उत्पाद हुआ फिर यहां व्यय हुआ, यानी यहां निकली फिर यहां व्यय हुआ और फिर यहां तीसरे पर्याय का उत्पाद, ऐसा नहीं है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि कोई पर्याय का यहां उत्पाद हुआ, यहां पर उसका व्यय हुआ और फिर बाद में दूसरी उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। हरेक समय में कोई ना कोई पर्याय उत्पाद व्यय है, उत्पाद रूप है, यहां दूसरे का उत्पाद, यहां तीसरे का उत्पाद, यहां चौथे का उत्पाद, जो तीसरे का उत्पाद है वही दूसरे का व्यय है। ये तीसरे का होना ही दूसरे का नहीं होना है, इस तरह उसको समझना। तो यहां जो 18 भाव है, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ये 18 जो भेद है हमने देखे थे ना, 4 ज्ञान कौन से, मति श्रुता अवधि और मनपरे, ये सुज्ञान सम्यक ज्ञान है, और 3 कुज्ञान, उसको अज्ञान भी कहते हैं, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। दर्शन में जो हम क्षौपशमिक दर्शन कहते हैं, छद्मस्थों के जो पाए जाते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और ये जो 5 लब्धियां, कौन सी 5 लब्धि, वो सम्यक तो पहले वाली वो नहीं, ये जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य है उसको भी ये 5 लब्धि कहते हैं, वो भी क्षावक्षम भाव रूप से है। और कौन कौन है, तो क्षावक्षमिक सम्यक्त्व, क्षावक्षमिक चारित्र और संयमासंयम, ये 18 भेद है। अब यहां तो ज्ञान पर और उस पर तो नहीं घटाए हैं, क्षावक्षमिक सम्यक्त्व की यहां बात बताते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में किसका उदय है और किसका नहीं है उसकी बात यहां बताएंगे। हाँ, अपना देरी से शुरू हुआ था ना, अभी समय है। मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, देखो उदयाभावी क्षय किसको कहना, उदय का अभाव ही उसको क्षय कहते हैं। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा है तथा उपशम की अपेक्षा से क्षावक्षमिक सम्यक्त्व कहलाता है। क्षावक्षमिक सम्यक्त्व में क्या बात है? देखो, हमने देखा था ना, क्षावक्षमिक कहो या वेदक सम्यक्त्व कहो, एक ही बात है। जब जीव को सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व हुआ था तो उसकी सत्ता में ये जो मिथ्यात्व कर्म था अनादि से, उसके तीन भेद हो गए हैं। मिथ्यात्व में से ही अनुभाग घटकर मिथ्यात्व कर्म तो रह ही गया है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन भेद हो गए। और अनंतानुबंधी भी उपशमित था। अब ऐसा कोई जीव मिथ्यात्व में भी चला गया या उपशम के बाद डायरेक्ट शौक्षम सम्यक दृष्टि हो जाता है तो क्या होता है? अभी ये जो पहले उपशमित था, तीनों ही उदय में नहीं आते थे, अभी उपशम का काल समाप्त हुआ, तो तीनों में से जैसा जीव का भाव है वैसा उसका उदय हो जाएगा। तो वेदक सम्यक्त्व में क्या होता है? सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। और ये जो है, यानी ये थोड़ा एक समय इसको आगे ले लो या एक आवली आगे ले लो, और ये जो दो कर्म है वो इस रूप से परिणमित होकर उदय में आते रहते। संक्रमित होना हमने देखा था ना, और अनंतानुबंधी भी किस रूप से आते हैं? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आते रहते, यानी ये वेदक सम्यक तो चालू रहते। सम्यक प्रकृति का उदय है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है। उदयाभावी क्षय है ना, तो किस रूप से उदय में आते हैं? सम्यक प्रकृति रूप से उदय आते हैं। ये परमाणु तो निकल जा रहे हैं, परमाणु अभी रहेंगे नहीं क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी स्थिति पूरी हुई है। तो उनका उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव, अपने रूप से उदय नहीं हो रहा है परंतु निकल जा रहे हैं, उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। और ऊपर जो पड़े हैं इनका उदय हो जावे तो मिथ्या तो हो जाए, परंतु ऐसा तो नहीं बन रहा है। सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है और ऊपर जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु है वहीं पर रुके हुए हैं, तो उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। ये जो है ना, सम्यक प्रकृति का उदय है। नीचे वर्तमान समय में सम्यक प्रकृति का उदय रहा और ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु थोड़े ऊपर है, वर्तमान समय में आ जाते तो उसका मिथ्यात्व का उदय हो जाता, तो ये टर्न होकर उदय में आ रहे हैं। ये उदयावली के बाहर है, उदयावली वर्तमान समय से थोड़े ऊपर है, तो वो उसमें टर्न होकर उदय में आते रहते। टर्न होकर, हाँ, जब उदय में आना है तो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आते। सम्यक प्रकृति रूप होना यानी उसका अनुभाग घट जाना, क्योंकि ये दो प्रकृतियां कैसी है? सर्वघाती है, और सम्यक प्रकृति देशघाती है। सम्यक्त्व का घात नहीं करती, उसका उदय भी होता रहे और सम्यक्त्व भी चालू रहे, ऐसी परिस्थिति है वहां पर।
और जो
अनंतानुबंधी
अनंतानुबंधी है वो भी
अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि रूप से टर्न होकर उदय। आज सुबह हमने पढ़ा था ना, उसमें गुणस्थान प्रवेशिका में थ्यूक का संक्रमण होता है, एक एक निशे कुछ रूप होकर उदय में आता है।
उदीर्णा और उदयावली में
थोड़ा यहाँ उदीर्णा के प्रसंग नहीं है, ठीक है। देखो, कर्म जो उदय में आते हैं तो उसको कहेंगे उदय हो रहा है। जो उदय में कर्म है वर्तमान समय से आवली काल तक जो उदय में आने योग्य है, निषेक है, उदय समय से वर्तमान समय से एक आवली तक के जो उदय में आने वाले जो निषेक है उसको कहते हैं उदयावली, बराबर। अभी जो निषेक भविष्य में पड़े हैं, मान लेते हैं घंटे के बाद उदय में आने वाले, हजार साल के बाद उदय में आने वाले, उसमें से कुछ परमाणु नीचे आकर उदयावली में जुड़ जाते हैं और उनके साथ उदय में आते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा होना। ऐसे थोड़े थोड़े परमाणु ऊपर से छूटकर नीचे आते हैं, उसमें जिसका उदय चल रहा है उसके साथ उदीर्णा भी होते ही रहती है थोड़े परमाणुओं की, उसको उदीर्णा ऐसा शब्द है।
हाँ, टेबल बैठे पर बुलाते हैं, लेकिन कोई क्या करके टेबल वाला पीछे वो आके
यहाँ उदाहरण देते ना, जैसे हम लाइन में खड़े है और टिकट लेने को और बीच में ही घुस जाते कोई आओ आओ चलो अपना फ्रेंड खड़ा है वहाँ सामने
बुक में वो एकदम
हाँ लिखा है
हाँ
तो इसको क्षौपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं और उसका क्षौपशम है ना क्षौपशम उदयाभाविक क्षय ऊपर के भविष्य के रहे वहीं पर है इसलिए क्षौपशम कहा और वहां उदय किसका है सम्यक प्रकृति का जो उदय है उदय को ही वेदक कहते हैं जैसे हमारा क्रोध का उदय हम कहेंगे हम क्रोध के वेदक है इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय है इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते दो नाम है उसके क्षौपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व क्षौपशमिक चारित्र में सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के समय जो राग है देखो कंडीशन क्या लिखा है क्षौपशम ये सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र जो है यहां जो क्षौपशमिक चारित्र कहा है मुनियों के योग्य जो चारित्र कहा जाता है वो बिना सम्यक्त्व के बाह्य व्रत अंगीकार करने से किसी को एक क्षौपशम चारित्र नहीं होता या ऊपर के गुणस्थान नहीं होते जो राग है उसकी अपेक्षा से वह सराग चारित्र कहलाता है क्या कहना चाहते हैं ये सराग सम्यक्त्व भी शब्द आता है शास्त्र में कहीं सराग चारित्र भी कहा तो चारित्र या सम्यक्त्व राग वाला नहीं होता है परंतु उसके साथ साथ पर्याय में जो राग बाकी है उस अपेक्षा से उसको सराग चारित्र कहने में आता है तो राग है वह चारित्र नहीं है वीतराग भाव ही चारित्र है परंतु चारित्र के साथ राग है इसलिए सराग कहते हैं हम कहते हैं ना ये सजीव है ये देह जड़ है कि जीव है ये देह है वो जड़ है कि चेतन है जड़ है परंतु हम इसमें रहते हैं तो इसको क्या कहेंगे सजीव है वैसे वो सराग वाला वो है तो चारित्र किसको कहना वीतराग भाव को चारित्र कहना परंतु अभी पर्याय में संज्वलन कषाय चल रहा है तो उसको सराग चारित्र कहने में आता है उसी को यहां क्षौपशम चारित्र कहा है संयमासंयम जो पांचवें गुणस्थान वाला है उसको वीरता विरत या संयमासंयम कह देते हैं अभी औदयिक भाव देखेंगे हम इसको भी हमने बहुत विस्तार से देखा है फिर दोबारा देख लेते हमने सूत्र भी पहले पढ़ा था देखो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध लेष्टा अभी इनकी संख्या बताते हैं चतु चतु स्त्री एक 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 षड भेदाह यानी तिर्यंच नरक मनुष्य और देव ये चार गतियां क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय स्त्री वेद पुरुष वेद नपुसक वेद ये तीन लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और छ लेशा कृष्ण नील कपोत पीत पद्म और शुक्ल ये सब मिलकर 21 भेद है इसकी भी बात हमने लेशा की वगैरह बहुत विस्तार से देखी थी और ये भगवान के भी शुक्ल लेशा उपचार से कही है उसकी भी हमने बात देखी थी और ज्ञान के अज्ञान के बारे में भी हमने चर्चा की थी अभी कितने दो मिनट है कितना अभी हमने कब शुरू किया था 4:10 को हाँ सवा अभी है 5 मिनट हम आगे कभी जो पारिणामिक भाव के भेद है उसको भी देखेंगे या औदयिक भाव में कोई शंका है क्योंकि हमने हरेक भाव पर विस्तार से चर्चा की हुई बहुत बार हम आगे के 7वां नंबर का सूत्र देखते हैं पारिणामिक भाव के 3 भेद जीव भव्य अभव्यत्वानि च जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व इस प्रकार पारिणामिक भाव के 3 भेद है तो टीका में कहते हैं आगे च शब्द है ना पारिणामिक किसको कहते हैं ये अनन्य अनंत एक रूप रहने वाला जो भाव है उसको पारिणामिक कहा है पारिणामिक क्यों कहा क्योंकि उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है फिर भी ये भव्यत्व अभव्यत्व और जो व्यवहार से जिसको जीवत्व कहने में आता है उसकी बात वो तो पर्याय रूप भाव हो जाएंगे परंतु जो अनादि अनंत जीव का जो भाव है उसको द्रव्यार्थिक जो जीवत्व है उसी के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये भव्य है कि अभव्य है उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात यहां आएगी। देखो हम देखते इसको सूत्र के अंत में च शब्द से अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणों का भी ग्रहण होता है। क्या कहते हैं च यानी क्या, जो द्रव्य का जो पूरा ही अनंत गुणों का अखंड पिंड है तो उसके सामान्य गुण भी उसमें है ना, विशेष गुण तो है ही है, सामान्य गुण भी उसमें गर्भित है, इसलिए च एक अक्षर डाल दिया तो उसमें वो भाव उसका सब आ गया। भव्यत्व मोक्ष प्राप्त करने योग्य, हाँ
ऐसा लिखते थे मान लो या इसमें,
हाँ
अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व च के जगह पर तो कैसे चलता है, जीव जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व
फिर भी च लगाना ही पड़ता क्योंकि उसके इसीलिए
जीवत्व भव्यत्व अभव्य तीन भाग जो हुए तो ये वस्तुत्व वगैरह जीवत्व में जाते थे।
देखो ये जीवत्व में भी दो भेद किए, एक जीवत्व है वो पर्याय रूप जीवत्व जिसको हम दस प्राण से जीव जीता है वो भी जीवत्व है, और एक अनादि अनंत जो जीव का जीव बना उसको भी जीवत्व कहते हैं। तो उसमें तो सभी आ गए ना, उसमें जब जीव है उसमें द्रव्य का भी सामान्य स्वरूप है कि नहीं, जीव कहते ही जीव के विशेष गुण तो आते ही आते हैं, परंतु जो सामान्य से सभी द्रव्यों का स्वरूप है उत्पाद वेद्रूपना है उसमें, उसमें अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व गुण लघुत्व आदि अनंत जो गुण है वो सामान्य से उसका द्रव्य का लक्षण है, और जो जीव का जीवपन है उसका और विशेष लक्षण है, सबको मिलकर यहां पारिणामिक भाव कहा है। तो देखो सूत्र की ये विशेषता होती है, मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में सूत्र कहा जाता है, इसलिए च में सब गर्भित हो गया। भव्यत्व में मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीव के भव्यत्व होता है, भव्यत्व भव्यपना, भव्य ने होने योग्य, तो उसमें भव्य सिद्धक भी कहते हैं या भव्य सिद्धिक शब्द आता है, और अभव्य सिद्धिक दो प्रकार के जीव होते हैं। क्या होने योग्य, तो सिद्ध होने योग्य, और सिद्ध होने की योग्यता जिसमें नहीं है, ऐसे दो प्रकार के जीव। जो अभव्य है उनके तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति तीन काल में नहीं होगी, उनमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, और भव्य जीव है कि उनमें योग्यता है, उसमें से कई भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अभी कितने ही जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है अभी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, कुछ काल में नजीक काल में मोक्ष चले जाएंगे, कितने ही भव्य जीव अभी पहले गुणस्थान में पड़े हैं, कितने ही भव्य अभी अनादि से ही निगोद में पड़े, नित्य निगोद में और कभी बाहर भी नहीं निकलेंगे, कितने ही भव्य है जो अभव्य संभव्य है, योग्यता है परंतु तीन काल में कभी मोक्ष में जाने वाले नहीं है, तो ऐसे भी भव्य पाए जाते हैं क्योंकि योग्यता तो पड़ी है परंतु नहीं, वैसे उनको पर्यायों का क्रम भगवान ने देखा है कि वे ऐसे ही रहेंगे, इस विश्व यानी संसार परिभ्रमण में चलते रहेंगे। अभव्यत्व ने जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं होते, भव्यों में तो योग्यता है अभव्यों में योग्यता ही नहीं है, उनके अभव्यत्व होता है।
ये भव्यत्व का जैसा कि यहाँ का कोई भी जो यहाँ जिसका यहाँ बर्थ हुआ हो यूएसए में तो 35 साल के बाद प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब ये नहीं कि सब लोग प्रेसिडेंट
बनेंगे,
वैसा ही नहीं,
ये ऐसे नहीं, योग्यता है वो आपने जो बताया वो तो मिनिमम उसकी क्या पात्रता है, पात्रता जैसे भव्य है उसमें भी किसकी पात्रता है अभी बनने योग्य, तो हमने हम उसमें कहते हैं ना कि जो जीव सदाचारी होगा, अभी उसकी चर्चा आएगी शाम को, अभी अपने पास समय नहीं है। सम्यक्त्व के भी कौन पात्र होता है, उसके भी आवश्यक कंडीशंस क्या है, मिनिमम पात्रता, हाँ वो नामधारी जैन कहलाएगा, वो बात आएगी शाम को देखो। हाँ जीवत्व चैतन्यत्व जीवनत्व ज्ञानादि गुणयुक्त रहना सो जीवन है, अभी ये इसका विशेष स्पष्टीकरण जो है वो हम कल देखेंगे पारिणामिक भाव की, फिर आपके कोई इसमें प्रश्न है तो भी उसको देखेंगे, और ये पांच भावों की और कुछ अधिक उसमें चर्चा भी करेंगे हम। कौन सी गुणस्थान की क्या बातें होती हैं। अभी यहीं रुक जाते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।